ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म है शांति। बच्चे, अपने स्वधर्म को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि शांति तुम्हारा स्वधर्म नहीं है? और बच्चे, शांति को भी समझो। शांति किसे कहते हैं? ऐसे नहीं कि बाहर से शोर शराबा बंद हो गया और फिर जो तुम अनुभव कर रहे हो वो शांति है। अंदर की जो आवाज़ें मन को लेकर चिल्लाना, माना मन चिल्ला रहा, बुद्धि का भटकना, संस्कारों का उछलना, यह शांत हो गया, माना शांति आ गई। नहीं बच्चे, बाहरी रूप से कुछ भी हो, इवन बुद्धि मन संस्कार के रूप से भी कुछ भी हो जाए, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, उसे समझने की कोशिश करो। शांति आत्मा का स्वधर्म है। मन बुद्धि संस्कार की बात नहीं हो रही यहाँ पर, न शांति के गुण की बात हो रही, न गुण शक्तियों की बात हो रही, आत्मा की बात हो रही। शांति आत्मा का स्वधर्म है, मना कुछ भी हो जाए आत्मा शांत स्वरूप रहेगी। कुछ भी हो जाए, शांत रहना स्वाभाविक है। बच्चे, तुम्हारी शांति को कोई भंग नहीं कर सकता। तुम्हारी शांति तुम्हारी है बच्चे, उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। तुम ध्यान पूर्वक चेक करो, तुम्हें किसी ने गाली गलौज की, क्या शांत हो सकते हो? विचार करो जरा। इवन बच्चे, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, तुम्हारी निंदा कर दी, क्या अशांत हो सकते हो? विचार करके देखो। बस मैं कुछ प्रयोग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, बस विचार करके देखो। इवन किसी ने तुम्हें थप्पड़ मार दी, लात भी मार दी, अशांत हो सकते हो? मुंह पे थूक दिया, अशांत हो सकते हो? विचार करके देखो। बस तुम्हें एक ही उत्तर मिलेगा, नहीं हो पा रहे, हो ही नहीं पा रहे, अशांत। तुम्हें जो लगता है कि इन सारी घटनाओं में तुम अशांत हो जाओगे, वो तुम्हारी माया का तुम्हें दिखाया हुआ भ्रम है। शांति तो है ही नहीं है अंदर, इम्पॉसिबल है बच्चे किसी आत्मा का अशांत होना। नहीं हो सकती कोई आत्मा अशांत, पॉसिबल ही नहीं है हर हालत में। कुछ भी करो, अशांति नहीं है बच्चे, बस शांति है। तुम बैठो अपने साथ, और इस संसार में जितने तुम्हें अशांत करने के उपाय हैं उनकी मानसिक परीक्षा लो खुद की, उन सारे उपायों को लेकर। ऐसे हुआ तो क्या हम अशांत हो सकते? वैसे हुआ तो क्या हम अशांत हो सकते? कोई उपाय ही नहीं मिलेगा बच्चे तुम्हें इस संसार में जो तुम्हें अशांत कर सके। कोशिश करके देखो। पर जब तक तुम बैठते नहीं हो, अपने साथ, तब तक तुम्हें सब भ्रम ही सत्य लग रहा है। होश में आ जा जरा, देख विचार कर पूरा पूरा। अशांत करने जैसा कुछ है क्या इस संसार में? इवन बच्चे, शरीर भी छूट जाए, तुम अशांत नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है अशांत होना, शरीर छूटने के बाद भी नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांति है। अभी इस शांति के बाद बाकी सब गुणों की, इवन ज्ञान की भी यात्रा है। इस शांति के बाद पहले अपना स्वधर्म समझो, शांति वाला। सब कुछ इसके बाद है, सुख भी इसके बाद है, प्रेम भी इसके बाद है, आनंद भी इसके बाद है, शांति के बाद। पर अगर शांति नहीं है और तुम बाकी सबके उपाय कर रहे हो, सुख के, प्रेम के, आनंद के, बच्चे भ्रम की और गहराई में अपने आप को तुम झोंक रहे हो। होश में आ जाओ, पहले शांति, एकदम शांत चित्त अवस्था, एकदम बच्चे शांति देखो कहाँ तक है। पूरी पूरी है, बस ये भ्रम के जो पर्दे हैं, लेयर्स हैं, उन्हें हटाओ। आज का तुम्हारा अभ्यास है, अगर समय मिले तो आज के पूरे दिन भर में बैठकर तुम अशांति के भ्रम को मिटाओ। अशांति के देखो क्या क्या तुम्हें अशांत कर सकता है। और बाबा चाहता है एंड ऑफ द डे, सोने से पहले एटलीस्ट जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा है, अशांति के सारे लेयर्स समाप्त हो जाए। खड़े करो सामने, माता पिता ने कुछ बोला, पति पत्नी ने कुछ झगड़ा किया, संकल्प नहीं कट कर, बच्चों की कोई बात हुई, संबंध संपर्क वालों ने कुछ अपमानित किया, तुम्हें जिससे जो एक्सपेक्टेड है निगेटिवली, अशांति को लेकर उसकी परीक्षा लो मानसिक रूप से, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन में, कि इन्होंने ऐसे किया तो क्या होगा। सारी परीक्षाएं लो, खुद ही खुद से लो। इवन जैसे मैं कहता हूँ, भोजन करने बैठे हो और किसी ने माथे पर पानी डाल दिया, फिर भी शांत एकदम। सारी परीक्षाएं तुम खुद लो, थप्पड़ मारने तक, लात मारने तक किसी और से, तुम सारी परीक्षाएं लो खुद की और देखो क्या होता है। समझ है बच्चे, जब यह पहला गुण, जब यह स्वधर्म, इसमें तुम आत्मा टिक जाओगे, यात्रा बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर। भक्ति मार्ग में भी अशांत मंदिर नहीं जा सकते, जाते हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, उसे मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, वो उनकी अपनी मर्जी है। पर अशांत मंदिर नहीं जा सकता, शांत स्वरूप को ही मंदिर जाना चाहिए। अशांत ना जाए, किसी भी बात को लेकर जो अशांत है वो मंदिर ना जाए, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में ना जाए, जितने भी प्रार्थना स्थल है, तीर्थ क्षेत्र है, ना जाए, किसी भी धर्म के हो, अशांत को वहाँ नहीं जाना चाहिए। इवन सत्संग में भी अशांत को नहीं जाना चाहिए, शांत ही जाए। समझ है बच्चे, शांति में आ जाओ, अपने स्वरूप में आ जाओ, होश में आ जाओ, शांति में आके देख, दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा। आज इस दुनिया में काम नहीं बढ़ा, क्रोध नहीं बढ़ा, लोभ मोह अहंकार नहीं बढ़ा, शांति बढ़ी है, शांति घटी है, शांति खो गई है। इसलिए बच्चे हर कोई शांति खोज रहा है। आपको हर किसी को लगता होगा दुनिया में जितने सुख है उन सबसे कोई सुख ले रहा है। नहीं बच्चे, वो सुख भोगने के बाद उसे जो महसूसता आती है शांति की, वो शांति वो चाहता है। सुख तो दिखावा है, खान पान का, वस्त्र अलंकार का, व्यवस्था का, जो तुम सुख ले रहे हो वो तो दिखावा है, और उस सुख से तुम्हें शांति चाहिए। जरा ध्यान पूर्वक देखो, तुम्हें हर बात में बस शांति चाहिए। किसी को जो प्रेम चाहिए ना, उस प्रेम में भी अंतिम रिजल्ट है शांति। ध्यान से चेक करो, किसी को प्रेम, प्रेम के दो वचन मिलने के बाद वो जो भरपूर होता है, उसके बाद उसकी आत्मा में शांति आ जाती है। ध्यान पूर्वक चेक करो, खुशी का भी अंतिम परिणाम शांति है। खुश हो, बहुत बहुत ज्यादा खुश हो, अंतिम परिणाम शांति। आनंद का भी अंतिम परिणाम शांति है। सबका अंतिम परिणाम शांति है। इसलिए बच्चे, तुम आत्माओं का स्वधर्म शांति है, तुम्हारा देश शांति धाम है, तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, ये समझो बच्चे। परमात्मा से भी क्या चाहिए, शांति। हर प्रकार से हर आत्मा शांति ही चाहती है। और कितनी दुर्भाग्य की बात है और कितनी अज्ञानता की बात है कि जो उसके पास है वो बाहर खोज रहा है शांति, कि कोई मुझे शांति दो। तुम्हें कोई शांति कैसे दे सकता है बच्चे, इवन परमात्मा भी नहीं दे सकता। परमात्मा शांत स्वरूप अवस्था में आने का ज्ञान दे सकता है, बाकी वो शांति कैसे दे सकता है। इस संसार में कुछ है नहीं जो तुम्हें शांति दे सके, न सिर्फ शांति। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को, जो गुण, जो शक्तियां, जो दिव्य गुण तुम्हारे अंदर है वो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इस बात को गहराई से समझो। तुम्हें लगता है तुम्हें कोई ज्ञान दे, भ्रम है। कैसे दे सकता है, ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही है, कोई ज्ञान तुम्हें कैसे दे सकता है। और वो जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है ना, वो उसके अंदर का ज्ञान दे रहा है, वो तुम्हारे काम का नहीं। हाँ, परमात्मा से जो ज्ञान ले रहे हो वो तुम्हारे काम का है, बाकी दुनिया में किसी से भी ज्ञान लो वो सारा ज्ञान उसका अपना है जो वो तुम्हें बता रहा है। लॉयर लॉयर का ज्ञान बताएगा, डॉक्टर डॉक्टर का ज्ञान बताएगा, इंजीनियर इंजीनियर का ज्ञान बताएगा, पर इसमें से तुम्हारा कोई भी प्रोफेशन नहीं है तो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्या करोगे उस ज्ञान का। इसलिए तुम भ्रम से जरा बाहर आओ कि कोई तुम्हें ज्ञान दे पाएगा, कैसे पॉसिबल है बच्चे। किसी ने ज्ञान का कोई अनुभव कर लिया वो उसकी लेवल है, वो उसकी स्टेज है। भल तुमने अनुभव भी सुन लिया, उसका सूत्र भी तुम्हें पता चला, तुम कैसे अनुभव कर सकते हो। वो उस लेवल तक पहुंचा है और फिर उसने अनुभव किया है और तुम चाहते हो ऐसे अनुभव हो जाए, कैसे पॉसिबल है बच्चे। पॉसिबल ही नहीं। इसलिए परमात्मा कहता है बस एक मुझे से सुनो, बाकी किसी से नहीं सुनो, क्योंकि हर किसी का अपना ज्ञान है। तुम क्या करोगे उस ज्ञान का? और ज्ञान देने वाले को बड़ा आनंद आएगा, हाँ कोई तो सुनने वाला मिला, पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा समय बर्बाद हो रहा है। वो जो सुना रहा है ना, उससे उसका रिपीट हो रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, उसका और पक्का हो रहा है। इसलिए परमात्मा कहता है किसी मनुष्य आत्मा से ज्ञान मत सुनो, क्योंकि वो उसके अनुभव है, वो उसका ज्ञान है, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा। हाँ, अनुभव की आदान प्रदान की, मौज की, थोड़े से गप्पे लगाए, वो बात निराली होती है, पर एक प्रॉपर गाइडेंस कि तुम ऐसे ही करो, ये ज्ञान है, तुम वैसे ही करो, बच्चे ये नहीं, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम वैसे करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं बच्चे, मुझे इस संसार की कोई एक बात और कोई एक अस्तित्व दिखाओ, एक बात जिस बात से किसी एक व्यक्ति का कल्याण हुआ है उसी से दूसरे का हुआ, सेम। दूसरा वो व्यक्ति दिखाओ, अस्तित्व जिसका जिस ज्ञान से कल्याण हुआ है उसी ज्ञान से किसी और का कल्याण हुआ है, कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं मिलेगा, सेम। इसे समझो, हर किसी के अंदर ज्ञान की मात्रा, ज्ञान की लेवल अलग अलग है, ज्ञान की ऊर्जा अलग अलग है, इसलिए किसी और का ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा, समझ है बच्चे। मुझे ऐसा कोई एक अस्तित्व दिखाओ जो दुनिया में संतों को सुन रहा है और उनके जैसा बन गया, सेम। चलो आधा बन गया, पाव बन गया, 10% बन गया, 1% बन गया, कोई भी अस्तित्व दिखाओ, दुनिया में जितने ज्ञानी हैं उनके जैसा कोई बन गया, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? सीधा सवाल है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो कि अगर कोई नहीं बन सका है उनके जैसा, संतों के घर में दोबारा कोई बन पाया है उनके जैसा, महंतों के घर में, अवतारों के घर में, नहीं पॉसिबल। हर किसी की अपनी यात्रा है, इस यात्रा को समझो, तुम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, यात्रा को समझो बच्चे, तुम्हारी अपनी यात्रा है। कोई और इतना ज्ञानी है तो तुम उतना ज्ञानी बनने की चेष्टा मत करो, तुम भटक जाओगे। यही हुआ इस संसार में, दुनिया एक दूसरे को देखकर भटक गई है, वही अगर खुद को देखे तो शायद कल्याण हो जाएगा। बच्चे होश में आ जाओ, एक दूसरे को मत देखो, तुम अपने आप को देखो। अज्ञानी को देखोगे तो गुस्सा आएगा, ज्ञानी को देखोगे तो जलसी आएगी, जलन होगी, माना दोनों को देखकर नुकसान है, और अपने को देखोगे तो कल्याण की भावना जागृत होगी कि मुझे स्वयं का कल्याण करना। बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा देख, विचार कर, अपने से विचार कर, गफलत नहीं कर, किसी और को ना देख। इसमें दूसरी बात भी छिपी है, किसी और को उपदेश भी ना कर। हाँ, परमात्मा से तुमने जो पाया है वो एज इट इज परमात्मा के नाम से किसी को सुना सकते हो कि परमात्मा से हमने ये सुना है, आगे आपकी मर्जी, अच्छा लगे तो सुनो, धारण करो और अपनी जीवन खुशहाल बनाओ। बाकी हमारी कोई बात नहीं है, तुम अगर तुम्हारी बात सुनाओगे तो तुम भटकाओगे। तुम किसी से तो सुने हो ना, सभी को मेरा सवाल है, तुम्हारे पास जो कुछ है, जो कुछ भी है, वो कहाँ से आया है? मैं सीधे कहता हूँ, सब पराया है। जब जन्मे थे, शरीर जन्मा था, ज्ञान था, तुम्हें तो ये भी पता नहीं था ये तुम्हारी माता है या पिता है, या तो माता पिता ने या फिर किसी ने तुम्हें ज्ञान दे दिया कि यह तुम्हारी माता है। मम्मी बोलो मम्मी, माँ बोलो माँ, यह तुम्हारे पिता है, पिताजी बोलो, पापा बोलो, किसी ने तो सिखाया ना। पता था क्या मम्मी पापा बोलने का, माँ बाप कहने का, कुछ होश था क्या? आगे की तो बात ही छोड़ दो, स्कूल में तो टीचर ने पढ़ाया है, कॉलेज में भी तो प्रोफेसर्स ने पढ़ाया है, तुम्हारा अपना क्या है? कुछ भी। इवन बच्चे कपड़े पहनना भी तुम्हें किसी ने सिखाया है, भोजन करना भी किसी ने सिखाया है। ध्यान पूर्वक चेक करो, बाल बनाना भी किसी ने सिखाया है, नहाना भी तुम्हें किसी ने सिखाया है, तुम्हारे माता पिता ने। ध्यान पूर्वक सब चेक करो, चप्पल जूते पहनना, तुम जो बैठते हो वो भी तुम्हें किसी ने सिखाया है, तुम्हारा चलना, तुम्हारा बात करना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा सुनना, सब तुम्हें किसी ने सिखाया है। और बड़े हो गए, शरीर बड़ा हो गया और तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया, तो बच्चे गूगल बाबा है, यूट्यूब माँ है, इंस्टा भाई है, फेसबुक बहन है, इन सब ने तुम्हें सिखाया है। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारी अपनी क्या पद्धति है यहाँ पर? एक भी बताओ जो तुम्हारी अपनी है। कुछ भी नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है बच्चे, कुछ भी पता नहीं। तुम्हारा अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं, सारा ज्ञान पराया है बच्चे, सारा ज्ञान। और तुम सोच रहे हो पराए ज्ञान से तुम कल्याण को उपलब्ध हो जाओगे, पॉसिबल है? जिससे तुम नौकरी या बिजनेस कर रहे हो वो भी किसी ने तो ज्ञान दिया है तुम्हें, समझ है बच्चे? तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, जरा होश में आ जाओ, पूरा पूरा हर गुण शक्ति का विस्तार करो तो बहुत हो जाएगा। बस होश में आ जाओ, नथिंग इज योर्स, यहाँ कुछ भी नहीं तुम्हारा। और तुम अहंकार जताते हो, ज्ञान सुनाते हुए क्या तुम्हारी अदा होती है, क्या भाषा होती है, क्या वाणी होती है, क्या आंखें होती है, क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे अभी अभी अवतरित हुए हो और तुम अपना ज्ञान दुनिया को सुना रहे हो। अरे बच्चे, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, सब पराया है। और तुम जो अध्यात्म किसी और को सुनाते हो वो किसी ने किसी गुरु से उठाया है, किसी ने किसी गुरु से। तुम्हारी अपनी खोज क्या है यहाँ पर, स्वयं प्रति बताओ, खुद की खोज? कुछ भी नहीं। कोई कोई गुरु कहते हैं यह सब झूठा ज्ञान है, झूठा भी है और झूठा भी है किसी और का, समझ है बच्चे? बच्चे सत्य ज्ञान तो वही है जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, ध्यान में रखना। बाहर से जो आया हुआ है वो उस प्रकार से झूठा नहीं है पर किसी और का है। समझ रहे बच्चे? किसी और ने भोजन किया और उसी हाथ से भोजन कर रहा है, उसी हाथ से और उसी प्लेट में तुम्हें अगर परोसा, खाओगे तो किसी और का ज्ञान कैसे ले रहे हो और कल्याण की कैसे आश रख रहे हो? बाहरी रूप से हाइजीन का इतना ध्यान रखते हो ना, तो अंदरूनी रूप से भी ध्यान रखो ज्ञान को लेकर। जब शांति में बैठोगे, अंदर से ज्ञान का झरना बहेगा, वो तुम्हारे लिए। इस भ्रम में नहीं चलना कि मैं ये पानी किसको पिलाऊं, इस पानी से माना ज्ञान से किसको नहलाऊं, ये भ्रम है सब। आपने देखा है संत कबीर जी ने कभी किसी और को सुनाया है? नहीं, वो तो बस गाते रहे, बोलते रहे, लिखते रहे। तुम सुनो या ना सुनो मुझे कोई मतलब नहीं है। सारे संतों ने किसी और को सुनाया है? नहीं, वो तो परमात्मा ने हमारे अंदर से निकाला है। जरूरी नहीं कि आप सुनो, हम मौज कर रहे उसमें, हम आनंद ले रहे। समझ की बात है बच्चे? कभी अगर आपने भोजन बनाया है खुद अकेले, तो जला हुआ पराठा रोटी वो भी अच्छा लगता है, खुद का है ना, थोड़ा बहुत जल गया है ना तो भी आप खा लेते हो, अच्छा लगता है। पर किसी और का कितना भी अच्छा हो बनाया हुआ, उतना मज़ा नहीं देगा। हाँ, पेट भरेगा, संतुष्टि देगा, उतनी खुशी नहीं देगा। पर खुद का पराठा रोटी जो भी है बनाते हो, कैसे भी बने, खाने में आनंद आता है। आपने कभी देखा है किसी और को संसार में जो खुद के ही बनाए हुए चीज में नुक्स निकाले, कमी निकाले? अब मैं करता हूं, मैंने भोजन बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुरंत कहता हूं ये आज परफेक्ट नहीं बना जैसे मैं चाहता था। भले आप सभी कहते हो कि नहीं बाबा बहुत अच्छा बना है, बेहतरीन बना है, स्वादिष्ट बना, पर नहीं, हाँ ऊर्जा उसमें प्रॉपर है, पर कहीं बनने के प्रोसेस में कुछ कम ज़्यादा हुआ होगा तो स्वाद थोड़ा बना। मैं हूँ जो मैं कमी निकालता हूँ मेरे हर चीज़ में, ये मुझे आदत है। मैं जो क्रिएशन कर रहा हूँ उसमें मैं सिर्फ कमी ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे परफेक्शन चाहिए, मेरा अपना स्वभाव है परफेक्शन का। हर बात में मुझे परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन के बिगैर नहीं चलता। इसलिए रेयरली कभी मैं कहूंगा हाँ बहुत अच्छी चीज बनी, रेयरली, बहुत मुश्किल। तो बच्चे तुम्हारे अंदर से जो ज्ञान निकलेगा वही तुम्हें आनंद देगा। इसलिए बाबा कहते चिंतन करो, मंथन करो अपने लिए, किसी और के लिए नहीं। समझ की बात बच्चों? ध्यान में रखना इन सारी बातों को, अपने लिए चिंतन मंथन करो। जैसे बाबा का बच्चा है जिसने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, बाबा के साइन भी लिए, शायद मुरली सुन रहे हो, बच्चे तेरी एक ही गलती हुई है कि तूने ये ज्ञान किसी और को दिखाया, किसी और के लिए प्रदर्शित किया। मैंने तेरे लिए दिया था इसलिए मैं तुझे कह रहा था ये सब सबमिट कर दो, क्योंकि बच्चे वो जो ज्ञान तेरे पास है उससे तेरा अभी कल्याण नहीं होगा, क्योंकि वो किसी और ने सुन लिया है, किसी और को पता चला है कि तेरे पास ऐसा ऐसा ज्ञान, माया क्या करती है पता है आपको? आपके पास ज्ञान आने के बाद पहले आपका यूट्यूब चैनल बनाएगी, उससे पहले शुरू करेगी व्हाट्सएप पर पोस्टिंग, ज्ञान के कुछ न कुछ पॉइंट्स आप पोस्टिंग करते जाओगे, फिर आपका यूट्यूब चैनल बनेगा, फिर इंस्टा तो आ ही जाएगा, फेसबुक तो आ ही जाएगा, और अगर ज़्यादा हुआ तो खुद की वेबसाइट भी बन जाती है। बस यात्रा समाप्त हुई। महात्मा बुद्ध जी की कोई वेबसाइट है? मैं जानना चाहता हूँ। इब्राहिम जी की, शंकराचार्य जी की है क्या वेबसाइट? है संतों की कोई वेबसाइट है, कोई चैनल है? बच्चे ध्यान में रखना, अभी यह जो तपस्वी आए कुंभ मेला में, उनकी कोई वेबसाइट कोई चैनल है उनका खुद का? क्या क्या सिद्धियाँ नहीं, मिट्टी का भी सोना बना सकते हो, बस वो दिखाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं सिद्धियों को। वो इसी बात पर रुके हैं, जब परमात्मा कहेगा तब इनको कार्य में लगाएंगे। वो अपने से कुछ नहीं करते, महान तपस्वी भी माया यही कराती है। देख बच्चे, तेरा कार्य अगर इस संसार में प्रत्यक्ष हुआ तो तू रचना का कार्य नहीं कर पाएगा, और तुझे लगता है कि आने वाली दुनिया की रचना का कार्य तुझसे हो तो संसार में तू और तेरा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। बड़ी बात कही, मर्जी तेरी, समझ है। आज भी ये दुनिया चल रही है पर ढंग से किसी को पूरा ज्ञान नहीं है। इंटरनेट बंद कर दो और मुझे बताओ, लैपटॉप किसने बनाया है पहला, कैमरा किसने निकाला, साउंड सिस्टम किसने निकाली, सब गुप्त है, बस इंटरनेट ने प्रत्यक्ष कर दिया है। इसलिए जितने गुप्तता में चलते हो उतना बड़ा कार्य तुमसे होता है। इसलिए बच्चे अपने अंदर से ज्ञान को खोजो, अपने अंदर से, और गुप्तता में चलो, देखो बहुत सेवा कर पाओगे। ध्यान में रखना इन बातों को, बड़ी बातें हैं सारी। ये तुम्हारी जो लड़ाई है, ये जो जंग है जो तुम लड़ रहे हो, तुम तभी जीतोगे जब तुम्हें लगता है और तुम्हें ये पक्का है कि जीतने के बाद ताली बजाने के लिए कोई नहीं होगा। बोलो जीतना है तो बाबा जीता के दे देगा, पर ताली बजाने के लिए कोई नहीं होगा, तुम्हारी स्तुति करने के लिए, तुम्हें अवार्ड रिवॉर्ड देने के लिए कोई नहीं होगा कि तुमने कमाल कर दिखाया, तभी तुम जीत जाओगे। महात्मा बुद्ध जी को किसने दिया बच्चे अवार्ड रिवॉर्ड? उनको मतलब भी नहीं इन बातों से। जितने संत होके गए किसने दिया है अवार्ड रिवॉर्ड? समझ की बात है। इसलिए बच्चों, जितने बड़े बड़े आज भी गुरु है, संत है, महान है, देखना उनका कभी अवार्ड और रिवॉर्ड में नाम नहीं आएगा। इतना सा अवार्ड और रिवॉर्ड, कितना भी बड़ा हो, नोबेल भी क्यों ना हो तुम्हारा, वो बहुत बड़े है, तुम्हारा प्राइज बहुत छोटा है। मेरे हिसाब से उनके नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है तुम्हारा प्राइज। ध्यान देना, समझ की बात है, होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा जागृत हो जाओ। देख, गुप्त रहोगे तो फिर अपने अंदर प्रत्यक्ष हो जाओ। बाहरी रूप से अगर तुम गुप्त हो, मतलब किसी को खबर ही नहीं कि तुम ज्ञानी हो, तुम योगी हो, तो अपने अंदर प्रत्यक्ष हो जाओगे, और जब परमात्मा को लगेगा तब परमात्मा तुम्हें प्रत्यक्ष कर देगा, तुम्हारे लिए नहीं, हाँ सेवा के लिए। तुम्हें प्रत्यक्ष करके मुझे क्या मिलेगा भाई, तुम अपनी प्रत्यक्षता की आश भी नहीं रखो न मैं मेरी प्रत्यक्षता चाहता हूं, करेंगे क्या बताओ जरा। मेरी भी प्रत्यक्षता हो गई कि हम कोई बड़े ज्ञानी है, ये है, आगे क्या इससे कल्याण होगा दुनिया का? प्रत्यक्षता से कल्याण किससे होगा ये बात करो। प्रत्यक्षता बच्चे दो कौड़ी की चीज है, उसमें कहाँ जाना है। इसलिए बच्चे अपने अंदर बैठो, अपने अंदर खोजो, बाहरी ज्ञान तुम्हारे काम का नहीं है। मेरे हिसाब से बस वो मनोरंजन है और कुछ भी नहीं, सिर्फ मनोरंजन, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ परमात्मा का ज्ञान तुम्हारा कल्याण करेगा, वो परमात्मा का ज्ञान बाहरी और अंदरूनी दोनों रूपों से तुम्हारा कल्याण करेगा। बाकी बाहर का सारा ज्ञान बच्चे बस एक मनोरंजन है और कुछ भी नहीं। इसलिए मनोरंजन के पीछे मत पड़ो, ध्यान दो इस बात पर पूरा पूरा, सारी समझ की बातें अपने अंदर बैठो, अपने अंदर खोजो, समझ की बातें अपने अंदर, पहाड़ में गुफा में बैठ जाओगे तो उसी पहाड़ से झरना बहना शुरू हो जाए, ध्यान में रखना। मेरे हिसाब से जहां जहां से नदियां शुरू हुई है झरने के रूप, वहां किसी न किसी ने जरूर तपस्या की। तपस्या के बिना नदी नहीं जन्मी है, ध्यान में रखना। बस यह हिस्ट्री पूरी पूरी नहीं मिलेगी, फिर वो छोटी सी भी नदी क्यों ना हो, नदी का पानी और नदी पूजनीय नहीं है, वो तो है उस रूप से, पर उस पानी से और उस नदी से उन तपस्वियों की तपस्या बह रही है। वो तपस्या सबको शक्ति दे रही है, वो तपस्या, उस तपस्या की वो ताकत है जो पानी के द्वारा बह रही है। उनकी तपस्या इतनी तेज हुई है कि भले उन्होंने शरीर छोड़ा है, अगले जन्मों में चले गए, पर उनकी एनर्जी को कोई चेंज नहीं कर सकता। कितने भी आए उस नदी में नहाकर चले जाए, शक्ति मिलेगी ही मिलेगी, प्राप्ति होगी ही होगी। समझ की बात है बच्चे, सब समझना पड़ता है, सब साइंस है। अब इसी को मैं एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस के रूप में लेकर जाओ तो पूरा ज्ञान चेंज हो जाएगा, सिंपल बात है। उन्होंने वहाँ जो तपस्या की, वहाँ से वो जो एनर्जी जनरेट हुई है, उसके वाइब्रेशंस उस पहाड़ में है, उस झरने में है, उस कणकण में है जहाँ से वो झरना बह रहा है, और वो फ्रिक्वेंसी कंटिन्यूसली एमिट हो रही है, कंटिन्यूसली वो फ्रिक्वेंसी बन गई अनंत, वो कंटिन्यूस उसी इसमें चल रही है। बस यही तो खेल है, मतलब यही तो स्पिरिचुअलिटी का साइंस है, सिंपल, और क्या है? और कोई बड़ी बात नहीं, अध्यात्म और विज्ञान एक ही है, बस ढंग अलग है समझने का। वैज्ञानिक तरीके से समझो तो विज्ञान समझ में आएगा, आध्यात्मिक तरीके से समझो तो अध्यात्म समझ में आएगा, है एक ही चीज। और कोई अंतर नहीं है बच्चे, दो चीजें है ही नहीं, समझ की बात है सारी। बस बच्चे अपने में बैठो, बस अपने में बैठो, तुम्हारे अंदर बहुत शांति है, बहुत ज्यादा। बच्चे तुम्हें अशांत कौन करता है? तुम्हें तुम्हारा विचार कभी अशांत किया है? तुम आत्मा हो, तुम हो, इस विचार से कभी अशांत हुए हो क्या? नहीं, सारे पराए विचार तुम्हें अशांत करते हैं। तुम बुद्धि से अपने आप को देख रहे हो, कभी अशांत हुए हो? नहीं बच्चे, पर तुम बुद्धि से सारे संसार को देखो, अशांति के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम अपने संस्कारों को देखो, शांति ही शांति है। कैसे भी हो संस्कार, तुम काम करोगे, पर किसी और के देखो, अशांति ही अशांति। अशांति सब बाहर है बच्चे, शांति सब अंदर। सबसे पहले किसी और को देखना बंद करो, उसको जो करना है करने दो, वो उसका पार्ट है। अच्छा करे बुरा करे वो उसकी अपनी मर्जी है, बुरा यहाँ कोई करना नहीं चाहता। पर पिछले जन्मों के भाग्य के परवश है, कुछ कर नहीं सकते। तुम तब तक अच्छा नहीं कर सकते जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं मिलता। मेरे कहने से कोई अच्छा नहीं करेगा, यहाँ पर नहीं करेगा, जब तक तुम अपने अंदर नहीं बैठते और तुम्हें अच्छाई बुराई का ज्ञान समझ में नहीं आता अपने से, तब तक तुम बुराई नहीं छोड़ोगे, अच्छाई नहीं करोगे। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, तुम्हें जो अच्छा लगे, समझ की बात है। सबसे बड़ी अच्छाई क्या है बच्चे पता है? कोई कहेगा कर्मों से किसी और को सुख देना, बोल से सुख देना, दृष्टि से सुख देना, वाइब्रेशन से, भाव से, वृत्ति से, स्थिति से सुख देना, सबसे बड़ी अच्छाई बच्चे सेकंड है। दूसरी, इन सभी से पहले अपने आप को सुख देना, ये सबसे बड़ी अच्छाई है। तुम दुनिया को कितना सुख देते हो, इससे बढ़कर बात है। तुम जो आत्मा हो वो अपने आप को कितना सुख देते हो, विचार करो। जो अपने आप को सुख दे सकता है वही दूसरों को सुख दे सकता है। क्या तुम तुम्हें सुख देते हो, विचार करो, सुख देते हो क्या? कितना देते हो? समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। तुम जो दूसरों को सुख दे रहे हो वो बस कार्मिक अकाउंट, ध्यान में रखना। इस भ्रम में नहीं आना कि तुम कोई पुण्य कर रहे हो, कार्मिक अकाउंट। अपने को सुख कितना दे रहे हो, स्वयं को आत्मा रूप में विचार करो। सबसे बड़ा पुण्य है पहले स्वयं आत्मा को सुख देना, शांति देना। ये नहीं कहूंगा मैं, शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। हाँ, सुख देना पड़ता, प्रेम देना पड़ता। कितना देते हो बच्चे, समझ है सारी, विचार करो अपने से। इसलिए अध्यात्म और कुछ भी नहीं, बस अपने को खोजने की, अपने तक पहुंचने की यात्रा है। बाकी कोई अध्यात्म की बात ही नहीं है एक्स्ट्रा। बाकी तुम अपने आप को ठग रहे हो हर प्रकार से। बच्चे, तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे काम आएगा, ध्यान में रखना तुम्हारा ज्ञान। इसलिए मुझे से ज्ञान लेकर तुम उस पॉइंट को उठाकर अपने अंदर ज्ञान खोजो, अपने अंदर। पीएचडी किसी ने की है? किसी और का थीसिस है, किसी और के काम आ सकता है क्या? पॉसिबल है नहीं। तुम्हें तुम्हारे रिसर्च करने हैं, वही तुम्हारे रिसर्च है। बच्चे ध्यान में रखना, सब तुम्हारा ही तुम्हारे काम आता है, किसी और का नहीं। भ्रम में नहीं चलना, ध्यान देना इस बात पर, तुम किसी और से कुछ भी आशा नहीं रखो, कुछ भी नहीं खोजो, ध्यान दो। बाकी हाँ, तुम इस संसार में चलते जो एक दूसरे के मददगार हो, वो बाहरी रूप से उनके काम आते हो, बाहरी रूप से उनके मददगार हो, माता पिता पति पत्नी बच्चे के रूप में। अंदरूनी रूप से तुम ही तुम्हारे मददगार हो, इवन बच्चे परमात्मा भी तुम्हें मदद नहीं कर सकता अंदरूनी रूप से, वो बस तुम्हें गाइड कर सकता है, गाइडेंस दे सकता है, मदद नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ तुम्हारे अलावा कोई मदद नहीं करेगा। तुम इस भ्रम में नहीं रहना कि परमात्मा कोई माथे पर हाथ रख देगा और तुम अपनी स्थिति में आ जाओ। ऐसा इस अब तक की सारी यात्रा का, युगो युगों का एक भी उदाहरण सुना जिसके माथे पर परमात्मा ने हाथ रखा और उद्धार हो गया? आत्मिक रूप से है कोई? बच्चे, श्री पार्वती जी को भी ज्ञान सुनना पड़ा और पुरुषार्थ करना पड़ा। कहते हैं ना शास्त्रों में लिखा है, भैरव तंत्र सीखा और पुरुषार्थ करना पड़ा, अमरनाथ की कथा सुनी, जो भी सुना। बच्चे होश में आ जाओ, ये नहीं होता, जादू नहीं है। ज्ञान के बाबत में तो जादू नहीं हो सकती, एटलीस्ट पॉसिबल ही नहीं। बाकी सारी बातों में जादू हो सकती है, ज्ञान के बाबत में नहीं। सब समझ की बातें है बच्चे, इसलिए गफलत नहीं करो, समझदार बनो, चिंतन करो अपने से, बाप से ज्ञान लेकर अपने काम की विधियां लेकर अपने अंदर से ज्ञान को जन्माओ, क्रिएट करो। और किसी को वो ज्ञान नहीं सुनाना, कंडीशन एक ही है। बच्चे ध्यान में रखना, तुम्हारे अंदर से तुम्हें जो ज्ञान मिला है वो तुमने किसी और को सुनाया कि अभी न वो उसके काम का न वो तुम्हारे काम का, उस ज्ञान की यात्रा ही समाप्त होगी। हाँ, उसे सुना सकते हैं, उसे सुना सकते हैं, कब? तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद, तुम्हारे रहते नहीं। तुम्हारे रहते अगर तुमने सुनाया, वो ज्ञान व्यर्थ हो गया। समझो इस बात को। इसलिए चिंतन मंथन से ज्ञान निकालो श्रीमत अनुसार और उससे अपना कल्याण करते रहो। इसलिए इस ज्ञान को लेकर जब कोई अनुभव सुनाता है, बाबा उसे चुप कराता है। क्यों? क्योंकि अगर तूने सुनाया तो अभी तेरे काम नहीं आएगा। क्यों सुना रहा? महात्मा बुद्ध जी ने, तपस्वियों ने कभी अनुभव सुना है? श्री शंकराचार्य जी ने या किसी ने भी, अघोरियों ने, सन्यासियों ने अपने अनुभव कुछ सुना है क्या? आप ध्यान से देखना, वो कभी आपको उनके तपस्या के अनुभव नहीं सुनाएंगे। अलाउड ही नहीं सुनाना। संतों ने कभी सुनाया क्या? ध्यान देना बच्चे इस बात पर, नहीं सुना सकते। अनुभव सुनाना ही समाप्त करना है। ध्यान देना बच्चे, ये बड़ा खेल है, बहुत बड़ा है। ये सूत्र अगर आप समझ पाए, इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इस सूत्र को अगर आप समझ पाए तो जीवन के मास्टर बनोगे। जो कोई सेनापति होता है लड़ाई में, जंग जीत कर आया है, पर उसने अगर अपनी शौर्य गाथा सुनाई कि मैंने कैसे तलवार चलाई, कैसे भाला चलाया, कैसे कितनों को गिराया, क्या क्या किया, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अगली लड़ाई हारेगा, क्योंकि उसका शौर्य समाप्त हो चुका है। वर्णन करके तुम कुछ दाल चावल बनाओ, सारी दुनिया तारीफ करे, बस तुम सुनाओ कैसे बनाई। तुमने अगर अगली बार उसको वापस बनाया ना तो मैं हार गया। जीवन में कभी भी पराक्रम सुनाना नहीं, किसी भी बात की शौर्य गाथा नहीं सुनानी है। यह सबसे बड़ा सूत्र है जीवन का। हाँ, अतरंगी हरकतें सुनाओ, एंटरटेनमेंट कराओ, जो कराना है। तुमने लाइफ में क्या क्या मजे किए, पर बच्चे ध्यान में रखना, तुम जिससे वहां तक पहुंचे हो, जिस पराक्रम से, वो पराक्रम मुख्य, वो कभी नहीं सुनाओ किसी को। ध्यान में रखना। आप बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी देखो, उनके बायोग्राफी में ये चीज आपको कभी नहीं मिलेगी, यह ज्ञान आपको कभी नहीं मिलेगा बड़े बड़े लोगों के बायोग्राफी में। बच्चे चेक कर, कहीं तेरा स्वभाव संस्कार तो नहीं है ऐसा कि तू खुद की शौर्य गाथा सुनाए? हाँ, किसी और ने तुम्हारे बारे में सुनाया, उसका असर नहीं होगा, उनकी अपनी मर्जी है। पर तुम तुम्हारा पराक्रम नहीं सुना सकते। अगर खोना है, कमजोर होना है, हारना है, तो अपना पराक्रम सुनाओ, और कोई और क्या सुना पाएगा? वही सुनाएगा जो उसने देखा है। पर असली पराक्रम जो अंदर घटित हुआ है वो तो किसी को पता ही नहीं तुम्हारे अलावा। इसलिए बच्चे किसी को नहीं सुनाओ। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो जिस बात को लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो, जिन विधियों को लेकर तुम आगे बढ़ रहे हो, वो कभी किसी को नहीं सुनाओ, कभी नहीं। बच्चे समझ की बातें सारी, होश में आना बच्चे, जागृत हो जाओ। इसलिए अपने अंदर बैठो। अब ये जो बात बताई है, इसका विस्तार भी बहुत होगा। तुम सबको अच्छा सिखाओ, पर तुम अच्छा कैसे सीखे तुम्हारे पास रखो, वरना खो जाएगा। ध्यान में रख। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, ये कैसी बात है, क्योंकि तुम जैसे सीखे वैसे कोई सीख नहीं सकता, अलाउड ही नहीं। उसने कितनी भी कोशिश की फिर भी नहीं सीख पाए। दुनिया के कोई दो ड्राइवर बताओ जो सेम गाड़ी चला, है पॉसिबल? कुछ ना कुछ कम ज्यादा होगा, सेम हो ही नहीं सकता बच्चे, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता इस संसार। इसलिए बच्चे देख विचार कर अपने से, उसको अच्छाई बताओ, उस अच्छाई में कल्याण क्या है ये भी सुनाओ, और उसको अपने हिसाब से वो करने दो, तुम्हारे हिसाब से मत सिखाओ, अपने हिसाब से करने दो। उसको अपने हिसाब से अच्छा बनने दो ना। देख बच्चे इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारे हिसाब से वो अच्छा बना ना तो बेचारा बोझ में जिएगा, इनके कारण में अच्छा बना, वो कभी सिर उठा के नहीं चल पाएगा। जैसे तुम आओगे सिर झुकाएगा, और ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। हर किसी को सिर उठा के चलने का अधिकार है, हर कोई अपने हिसाब से चले, पूरा पूरा सारी समझ की बात है। इसलिए अच्छाई बताओ, अच्छाई का ज्ञान दो, तरीका उसका होने दो, अच्छाई का समझ की बात। मैं कहता हूं कुछ यही करो वही करो, मैं बस तुम्हें बता रहा हूं ये करोगे तो ये मिलेगा, नहीं करोगे तो वो मिलेगा, मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मैं मेरा काम कर रहा हूं ज्ञान देने का, बाकी तुम क्या कर रहे हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ मेरा काम है तुम्हें उस अवस्था तक लेके जाना, पर मैं थोड़ी परेशान हो जाऊं, मैं थोड़ी जोर जबरदस्ती करूं, समझ है बच्चे? बनो ना बनो वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मेरी शुभ भावना शुभ कामना सदा है, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम बनो, आज अभी इसी घड़ी बनो, पर जबरदस्ती नहीं कर सकता मैं, वो हिंसा है। जबरदस्ती किसी को अच्छा बनाना भी हिंसा है, समझ है बच्चे? अगर ऐसे पॉसिबल होता ना तो श्री राम जी सबसे पहले श्री रावण को अच्छा बनाते, मारने की आवश्यकता नहीं थी, कृपा आशीर्वाद कर देते, दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि आ जाती, बन गए अच्छे, समझ है बच्चे? श्री विष्णु जी श्री भस्मासुर जी को अच्छा बना देते, श्री हिरण्यकश्यपु को अच्छा बना देते, समझ है बच्चे? श्री कृष्ण जी अर्जुन को छोड़कर सबसे पहले श्री दुर्योधन को अच्छा बना देते, महाभारत ही नहीं घटित होता। देखो ना, श्री अर्जुन के बजाय अगर श्री दुर्योधन को अगर ज्ञान दिया होता क्या होता? महाभारत ही घटित नहीं होता। बस ज्ञान बदल गया तो, पर यह कायदा नहीं है, यह लॉ नहीं है, हिंसा नहीं की जाती। जितने असुर जन्म में है हिस्ट्री में, बस एक को ज्ञान दे दो, देखो क्या होता है, समझ है बच्चे? सारे अगर हिटलर को ज्ञान दिया होता क्या हो जाता? वर्ल्ड वॉर ही नहीं होती, सिंपल बात है, समझ की बात है सारे। पर बच्चे कायदा ही नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि आप किसको बेहतर बनाना चाहोगे, तो ये सारे इनमें से जिस समय में जो सबसे लोएस्ट है उसको बेहतर बनाओ, वापस दुनिया ऊपर उठ जाएगी। समझ की बातें हैं सारी, होश में आ जाओ बच्चे। इसलिए मैं किसी को जोर जबरदस्ती ज्ञान नहीं दे सकता। लेना हो तो लो, ना लेना हो तो ना लो, तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। तुम्हें लगता होगा कि इसमें कल्याण है तो लो। ये अध्यात्म मना झंझट है, कौन सुनेगा इनकी बात? अरे मत सुनो, मौज करो, अपनी जीवन जियो, अच्छे से आनंद करो। किसने कहा अध्यात्म के पीछे लगने के लिए? ध्यान में रखना, तुम आध्यात्मिक ज्ञान लो या नहीं लो, तुम आध्यात्मिक ही हो। हर साइंटिस्ट आध्यात्मिक है, ध्यान में रखना। दुनिया का हर अस्तित्व आध्यात्मिक है, हर कण आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक बनना नहीं पड़ता बच्चे, हर नास्तिक भी आस्तिक है। समझ की बात है। वो कहता है ना कि मुझे भगवान में कोई विश्वास नहीं है, ये तेरा कहना ही सिद्ध करता है कि भगवान है, वरना बोलने की भी जरूरत नहीं है। तू बोल रहा है ना, भगवान में कोई विश्वास नहीं है मेरा, मेरी कोई आस्था नहीं। अभी अगर वो नहीं होता तो तू बोलता भी नहीं। वो है ये तुझे भी पता है, इसलिए तू कहता है विश्वास नहीं। और ऐसा जो कहता है ना, वही सबसे बड़ा आस्तिक होता है। बड़ा ज्ञान है बच्चे, उल्टा ज्ञान, समझ है बच्चे। इसलिए देख, तुझे जो अच्छा लगे ले, बस अपना कल्याण कर, सदा सुखी रहे जीवन में, सदा सुखी। बाबा को वही अच्छा लगता है, हर कोई हंसता रहे, खुशी में रहे, मौज में रहे, आनंद में रहे, यही तो जीवन है। स्वर्ग क्या चीज है? सदा यही बातें चलती है, सदा खुशी, सदा शांति, सदा प्रेम, सदा आनंद, सदा सुख, उसका नाम है स्वर्ग। यहां अगर तुम्हारे जीवन में यह सब आ गया, स्वर्ग आ गया। बाकी वो सोने चांदी का स्वर्ग बाद में देखेंगे, किसी सूक्ष्म लोक का स्वर्ग बाद में देखेंगे। अपने जीवन में यह स्वर्ग बनाओ हर प्रकार से, समझ है बच्चे। उस स्वर्ग में अगर तुम होंगे तो किसी और के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ऐसा यहां क्यों नहीं करते? उस स्वर्ग में अगर तुम होंगे तो तुम्हारे मन में क्या विचार चलेंगे? बुद्धि क्या देखेगी? संस्कार क्या होंगे? ऐसे यहां क्यों नहीं? तुम इस आशा में बैठे हो वहां जाएंगे तो ये सब करेंगे, नहीं हो सकता। यहां ही नहीं हो पा रहा है, वहां क्या होगा? वहां जा ही नहीं पाओगे। इसलिए बच्चे देख, होश में आ जा, पूरा पूरा अपने अंदर बैठ, सारे सुख सारी शांति अपने अंदर है, बाहर कुछ नहीं। बाहर कोई जो शांतपूर्ण तुझसे बात कर रहा है, वो उसकी शांति नहीं, उस बात से तेरे अंदर की शांति जागृत हो रही और तुझे शांति की अनुभूति हो रही, वो उसकी शांति नहीं है बच्चे। बच्चे तुझे जो अंदर महसूस हो रहा है किसी और से, वो तेरा ही है। बस उसने शांति का व्यवहार किया तो तेरे अंदर की शांति जागृत हो गई और तुझे और शांति की अनुभूति हो रही। बस उसने प्रेम का व्यवहार किया तो तेरे अंदर का प्रेम जागृत हो गया और तुझे प्रेम की अनुभूति हो रही। उसने सुख का व्यवहार किया तो तेरे अंदर का सुख जागृत हुआ, तुझे सुख की अनुभूति हो रही। उसने खुशी का व्यवहार किया तेरे अंदर की खुशी जागृत हुई, खुशी अनुभूति में आ गई। ये गुण है बच्चे। इसी प्रकार से जब तक कोई तुझे से झगड़ा ना करे तब तक तुझे पता नहीं चलेगा अंदर क्रोध है या नहीं है, गुस्सा है या नहीं है। जब तक तुझे कोई अपमानित ना करे तब तक तुझे पता नहीं चलेगा अंदर अपमान है या नहीं है। सारी बातें व्यवहार से पता चलती अंदर क्या है। समझ है बच्चे, सब कुछ व्यवहार से पता चलता है। किसी के अंदर गुस्सा ही नहीं है, कोई थप्पड़ भी मार दे नहीं आएगा गुस्सा, कितनी भी बड़ी गाली दे दे गुस्सा ही नहीं है अंदर। तुम्हें कोई गुस्सा नहीं दिला रहा है, तुम्हें कोई इरिटेट नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई नाराज उदास नहीं कर रहा है, तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ध्यान से चेक करो, ये सब तुम्हारे अंदर है, बस वो निमित्त बन रहा है, इमर्ज हो रहा है, इसलिए तो आ रहा है। समझ है बच्चे, जो तुम्हारे अंदर है वही आएगा। सारी समझ की बात है। प्रेम होगा तो प्रेम आएगा, जो होगा वो आएगा बच्चे। सारी समझ की बात है। किसी झरने को देखा है आपने? पहाड़ों से, पत्थरों से बहता है, मिट्टी रेयरली मिलेगी, उस झरने का पानी बड़ा शुद्ध होता है। मिट्टी नहीं होती ना, मिट्टी बह के चली गई सालों से, अभी बस पत्थर है। तो पत्थरों से सिर्फ प्योर वाटर बह रहा है, पर किसी झरने का पानी, वो झरना पहाड़ से मिट्टी से होके आता है, मिट्टी वाला होता है। अभी बारिश हुई, बारिश में मिट्टी है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, बारिश में मिट्टी है क्या? नहीं ना, सामने वाले में मिट्टी नहीं है, मिट्टी तो पहाड़ पर है, बस बारिश हुई, मिट्टी ढल गई, बह गई। अभी झरना कहेगा ये मिट्टी मेरी नहीं है, ये तो बारिश हुई इसलिए मिट्टी बह गई, तो गलत बात है। मिट्टी तो तेरे सूखे झरने में ही थी, सूखे पहाड़ पर ही थी, अभी उस पहाड़ से मिट्टी क्यों नहीं बही? वही बारिश वहां भी हुई ना, क्योंकि वहां मिट्टी है ही नहीं। जो होगा वो बहेगा, कुछ नहीं कर सकते। और बच्चे वही वो मौका होता है जिसमें तुम्हें पता चले ऐसी सारी घटनाओं में कि अंदर क्या क्या है। कोई तुम पर इरिटेट होता है, नाराज होता है, उसमें पता चलता है अंदर क्या है। वरना बच्चे जन्म भर दबाते रहोगे और एक दिन ब्लास्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ध्यान में रखना, इसलिए जो अंदर है बाहर आ रहा है। चेक करो अंदर क्या क्या है। संसार को दोष नहीं दो, गलती से भी संसार को दोष देना भ्रम है बच्चे, माया जाल है। जैसे वो झरना बारिश को दोष दे रहा है कि मेरा कोई दोष नहीं, ये बारिश के कारण मिट्टी आई। अभी प्योरली दिख रहा है ना तुम्हें कि वो झरना भ्रम में है। अगर कोई अस्तित्व होता बोलने वाला तो तुम क्या कहोगे उसे? आप भ्रम में हो। वही मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आप भ्रम में हो, जो दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। ना अच्छाई के लिए ब्लेम करो, ना बुराई के लिए ब्लेम करो, जो है बाहर बह रहा है। इसलिए बच्चे अंदर बैठो और चेक करो क्या क्या है और क्या रखना है क्या नहीं रखना है, ये देखो और अपना कल्याण करो। आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर है, योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाए सोने का पहाड़ स्थापन करते हो। पांच तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट होते हैं। सतयुग की बात है, जाएंगे तब देखेंगे, अभी सपने नहीं सजाते, अभी इसको बनाओ। जब तक तुम अपने अंदर नहीं उतरे हो, ध्यान में रखना, वो स्वर्ग भी महामाया है, उस स्वर्ग को सोचना भी नहीं, महामाया है, उस स्वर्ग के पीछे पागल हो जाओगे। जब तक अपने अंदर नहीं उतरे हो, अपने को बनाया नहीं, समझ की बात है बच्चे, जैसे कोई विदेश चला जाता है, वह विदेश के कंट्रीज का वीज़ा मिलने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी लगती है, पात्रता लगती है। तुम्हारे पास अगर वो पात्रता नहीं है और तुम आशा कर रहे हो यूएस यूके का वीज़ा मिल जाएगा तुम्हें, पॉसिबल है क्या? पात्रता चाहिए ना, जो भी होगी उनकी पात्रता ही नहीं है और तुम वीज़ा की बात कर रहे हो, नहीं हो सकता बच्चे। सेम बात है, पहले पात्रता बनाओ फिर सपने देखो स्वर्ग में जाने के। बिना पात्रता के मेरे हिसाब से स्वर्ग के सपने कोई ना देखे, क्योंकि बच्चे अगर नहीं मिला ना स्वर्ग का चांस तो बहुत रोओगे, दुखी हो जाओ। जैसे वो वीज़ा किसी को नहीं मिलता और बड़े बड़े सपने सजाते तो बड़ा रोना आता है, बड़ा रोना आता है। हमने देखा है, हम भी जब वीज़ा के लिए गए थे तब एक बच्चा था, 6 बार अप्लाई किया एजुकेशन पर्पज़ के लिए, वो 6ठी बारी थी। हम सबको सुना रहा था, रो रहा था, बार 6 बार डिनाई किया, रिजेक्ट किया, नकार दिया, बाहर रो रहा था। हम वही सुन रहे थे उनकी बातें, क्या हुआ? कह रहे थे कि 6 बार वीज़ा रिजेक्ट किया। समझ है बच्चे, अभी रोना क्यों आया? क्योंकि उसने सपने सजाए थे। अगर सपने नहीं सजाए होते ना तो रोना कभी नहीं आता, ठीक है? और बच्चों, संसार के लिए बाप ये कहेगा, ये सब जन्म पत्री में देखो, जन्म पत्री में नोंद होगा कि तुम्हें इस संसार में किसी कंट्री का वीज़ा मिलेगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। बच्चे, लौकिक जो जन्म पत्री होती है उसमें सारी डिटेल होती है कि तुम विदेश जाकर पढ़ाई पढ़ोगे, नौकरी धंधा करोगे, सेटल हो जाओगे, ये सब उसमें होता है सब कुछ। उसे देखो और फिर आगे बढ़ो, संसार की बात। उसी प्रकार बच्चे, स्वर्ग के सपने नहीं सजाओ, पहले पात्रता बनाओ, अपने स्थिति में आ जाओ, गुण शक्तियों की धारणा करो, वैसे बनो और फिर सपने देखने की आवश्यकता नहीं है, सब रियलिटी में तुम्हारे जीवन में आ जाए। पहले बनो बच्चे, समझ की बात है, होश में आ जाओ जरा और अपना कल्याण करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दो नंबर, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है, अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है, वरदान है। तड़पती हुई आत्माओं को एक सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है, आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियाँ जी हजूर करेंगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा न कोई। सर्व संबंध सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। अच्छा, ओम शांति।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।